नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया, तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया। श्री शाह ने दावा किया, भारतीय जनता पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी विधेयक मनरेगा योजना की कमियों को दूर करेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया का ढाका में निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। देश के उत्तरी भाग में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बाधित, दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण 118 उड़ानें रद्द। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच पांचवा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के कारण पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कोलकाता में आज श्री शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठ की समस्या का समाधान करने में विफल रही हैं। आरजी कर और कस्बा विधि महाविद्यालय की दुष्कर्म की घटनाओं पर गृहमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 के चुनाव में 3 सीट जीतने वाली पार्टी ने 5 वर्ष में 77 सीटें हासिल कर ली हैं।
19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली, और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी।
श्री शाह ने कहा कि अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को निकालने के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल सीमा से हो रही घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।
हम मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर दे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और मनरेगा योजना की कमियों को दूर करने के लिए विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित किया है। वे आज भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष के योजना का नाम बदलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अतीत में जब विपक्षी दल सत्ता में थे, रोजगार संबंधी योजनाओं के नाम कई बार बदले गए थे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ता के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल है और अधिनियम के तहत आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है, वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा।
विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री चौहान ने कहा कि लोकसभा में इस विधेयक पर 8 घंटे से अधिक समय तक विस्तृत बहस हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने केवल हंगामा किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के विरुद्ध लाया जा रहा प्रस्ताव देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है।
पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। आप चर्चा में जवाब ना सुनो और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले विचार विमर्श के लिए नई दिल्ली में नीति आयोग के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। बैठक में विशेषज्ञों को देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिल रहा है। नीति आयोग की इस बैठक में सरकार को आर्थिक नियोजन के अगले चरण की तैयारी के लिए बहुमूल्य सुझाव मिलने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के गुमला जिले में अंतर्राज्य जन संस्कृति समागम समारोह कार्तिक यात्रा के समापन समारोह में सम्मिलित हुई। राष्ट्रपति ने बाबा कार्तिक उरांव का स्मरण करते हुए जनजातियों के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्तिक यात्रा में शिक्षा के लिए किए गए प्रयास बाबा कार्तिक उरांव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि शिक्षा विकसित भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक हित के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यांत्रिक मेधा सहित नई प्रौद्योगिकी को जिम्मेदारी से अपनाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने आज तिरुवनंतपुरम में मार इवानियो स्वायत्त महाविद्यालय के प्लैटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा राष्ट्र का भविष्य हैं। उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
साल 2025 अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, तो आइए इस वर्ष की उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों को नया रूप दिया। साहसिक नीतिगत निर्णयों से लेकर दूरगामी सुधारों तक 2025 का सार एक शब्द में है, परिवर्तन। हमारे विशेष वर्षांत कार्यक्रम 2025 सुधारों का वर्ष में शामिल है 30 मिनट का गहन विश्लेषण, जिसमें उन विचारों, निर्णयों और परिणामों को समेटा गया है जो वास्तव में बदलाव लाए। कल रात 8 बजे केवल FM गोल्ड पर सुनिए इस वर्ष की उपलब्धियों की कहानी जिन्होंने भविष्य की नींव रखी।
दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की अध्यक्ष खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। वे दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की अत्यधिक प्रभावशाली हस्तियों में से एक थीं। उन्होंने कई वर्षों तक BNP की अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं। बांग्लादेश ने खालिदा जिया के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उनकी नमाज़े जनाजा के दिन कल 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये घोषणा आज अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की। उन्होंने लोगों से अनुशासन और धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 को लेकर एक लेख साझा किया। इसमें शासन के उन संचयी कार्यों पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने धीरे धीरे बाधाओं को दूर किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एक पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर रसद, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक देश के विकास गाथा विश्वसनीयता, स्थिरता और दीर्घकालिक विश्वास पर आधारित है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में नई पीढ़ी के ध्रुव हेलीकॉप्टर के नागरिक संस्करण की पहली उड़ान को रवाना किया। इस हेलीकॉप्टर को स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से नागरिक प्रमाणन प्राप्त हुआ है। श्री राममोहन नायडू ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ध्रुव का नागरिक संस्करण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। मुंबई में उपनगरीय भांडुप पश्चिम में एक BST बस ने पैदल यात्रियों को कुचल दिया। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हो गए। ये घटना कल रात करीब 10 बजे व्यस्त स्टेशन रोड पर हुई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 3 महिलाएं थीं। बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस हादसे में अपनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के विनायक क्षेत्र में आज सुबह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बस में लगभग 17 से 18 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केरल के अलपुषा जिले में एवियन फ्लू को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में नमूने भेजे गए हैं। रोकथाम को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई और तुरंत उपाय शुरू किए गए। इस बीच अलपुषा जिला कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप की 9वीं वर्षगांठ है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम ऐप की वर्ष 2016 में इसी दिन शुरुआत हुई थी। इस वर्ष 28 दिसंबर तक भीम ऐप के माध्यम से 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के 66,30,00,000 से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश के उत्तरी भागों में घने कोहरे से आज रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली आने वाली 20 से अधिक रेलगाड़ी 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। खराब मौसम के कारण हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण आज 118 उड़ानें रद्द कर दी गईं। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज ठंड रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में घना कोहरा रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 30 दिसंबर 1947 को नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में अटूट साहस और वीरता के साथ तिरंगा फहराया था। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले ही श्रृंखला में 4-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। वहीं रांची में महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में श्राची बंगाल टाइगर्स ने अपने पहले मुकाबले में JSW सूरमा हॉकी क्लब को 1-0 से हरा दिया। हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण वेव्स और हॉकी इंडिया लीग के यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। उधर कतर में फिडे वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन भारत के अर्जुन एरिगेसी शीर्ष स्थान पर रहे। अर्जुन 13वें दौर में 10 अंकों के साथ मैक्सिम वाचियर लाग्रेव और फेबियानो कारुआना के साथ ओपन वर्ग में शीर्ष पर हैं। इस बीच 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कल दुबई में विश्व खेल शिखर सम्मेलन में की गई। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले वर्ष मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में होने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए 15 करोड़ से अधिक टिकटों का अनुरोध प्राप्त हुआ है। विश्व कप टिकटों के अनुरोध का ये नया रिकॉर्ड है। विश्व कप अगले वर्ष 11 जून को शुरू होगा। विश्व कप में रिकॉर्ड 48 टीम कुल 104 मैच खेलेंगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया, तृणमूल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया। श्री शाह ने दावा किया, भारतीय जनता पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी विधेयक मनरेगा योजना की कमियों को दूर करेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का ढाका में निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। देश के उत्तरी भाग में घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बाधित। दिल्ली हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण 118 उड़ानें रद्द। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।